जब तक उन तामिया के यहां होने का मतलब समझता तब तक वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो तेजी से इसके पीछे लपका और इसी तेजी से बाहर आकर मेहमानों के बीच इसे ढूंढने लगा, लेकिन न जाने वो कहां गायब हो चुकी थी। ऊन ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और इसे कॉल करने लगा, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। एक तो ये लड़की समझाने के बावजूद नहीं समझ रही, कह तो चुका हूं कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर क्या फायदा है इस तरह से बात ना करने का। तामिया, अगर रिश्ते में यकीन ना हो तो रिश्ते का कोई फायदा नहीं, तुम्हें ये बात समझनी होगी। मैं मोहब्बत के बगैर रह सकता हूँ लेकिन एतबार के बगैर नहीं। ऊन फोन लिए बेचैनी से टहल रहा था जबकि सामने पार तामिया इसकी बेताबियां देखकर हंस रही थी। वाह ऊन, तुम तो बिल्कुल दुखी आशिक निकले मेरे। ऊन अचानक कॉल करते पलटा तो पीछे आरजू खड़ी थी। ऊन जी, आपको पुप्पो बुला रही हैं। मैं कमरे में भी गई थी लेकिन तब आप फोन पर बिजी थे, आरजू धीमे लहजे में कहती इसके होश उड़ा चुकी थी। आरजू, तुम यहां खड़ी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो तुम्हारे मेके वाले आए हैं, तायमी और उनकी बेटी हानिया ने आकर इसे बताया, जबकि ऊन हैरान और परेशान नजरों से अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था जिसे हानिया हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई थी। आरजू ही तामिया है, ये कैसे मुमकिन है, आरजू तो मेरी बीवी है। ये तामिया थी तो आरजू कौन है, और कोई अगर आरजू है तो तामिया कौन है। मतलब आरजू वो लड़की है जिसे मैंने शॉपिंग मॉल में देखा था, जिसकी तस्वीर मेरे पास है। इसका नाम तो तामिया उस्मान था, नहीं वहां पर मिस उस्मान लिखा था। मतलब उमर को गलत इन्फॉर्मेशन मिली। मैं भी सोचूं मेरी आरजू इतनी बोल्ड हो ही नहीं सकती, वो तो पर्दा करने वाली इतनी प्यारी सी लड़की थी, और ये तामिया कैसे इतनी बुरी बात इतनी आसानी से कर लेती है। मतलब आरजू मेरी बीवी है। या अल्लाह, जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना बेचैन हूँ, वो एक महीने से मेरे साथ मेरे ही घर में रही है और मुझे खबर तक नहीं। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जो चाहा आपने इसी को मेरे दामन में डाल दिया। अगर आरजू से मेरी तलाक हो जाती तो मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट में रहता कि मेरी वजह से एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन फिर तामिया कौन है, वो झूठ क्यों बोल रही है। एक मिनट, वो झूठ कहाँ बोल रही है, इसने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा कि इसने मुझे शॉपिंग मॉल में देखा है। मतलब मैं खुद ही गलत फहमी का शिकार था। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे किसी बड़े फैसले से बचा लिया। मैंने आरजू के लिए ही आरजू के साथ कितना बुरा सलूक किया, अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। वो खुद ही सोचते हुए सामने अपनी माँ के साथ खड़ी इस मासूम सी लड़की को देख रहा था, फिर मुस्कुरा दिया। मेरी बीवी है, मेरी शक्ल नहीं देखेगी तो फिर किसकी देखेगी। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ जाने लगा जब इसका फोन बजने लगा। वो अभी तायम्मी और तामिया से मिली थी जो इसे बिल्कुल भी घास ना डालते हुए आगे बढ़ गई। तुम क्यों मरी जा रही हो इनके लिए, दफा करो इन्हें। हानिया को इनका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा ना लगा, इसीलिए तप कर बोली, हानिया भाभी, वो मेरे अपने हैं, उन्होंने पाला है मुझे, मैं इस तरह मुंह तो नहीं फेर सकती। आप मेहमानों को संभाले, मैं इनको पानी वगैरह दे के आती हूँ। हाय, कितना बड़ा घर है, ऊन के नाम है, अब तो आरजू का हो गया, ताई ने सर्द आह भर कर कहा। ऐसे ही आरजू का हो गया, आपको लगता है मैं यहाँ की कोई चीज आरजू की होने दूंगी, ऊन तक इसका नहीं है। तामिया ने एक अदा से अपने बालों की लट उंगली में लपेटी। क्या मतलब है तेरा लड़की, क्या सोचा है, आने तो दें इस चुड़ैल को यहाँ तक, फिर बताती हूँ। इसने सामने आती आरजू की तरफ इशारा किया जब वो अपने हाथ में डिश में कुछ खाने पीने की चीजें लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। इसने इनके सामने टेबल पर सजाई। सुनो, तुम्हारा शोहर तुम्हें मुंह लगाता है, तामिया ने एक अदा से पूछा जैसे वो सब कुछ जानती हो। जी आपी, सब कुछ ठीक है, आरजू ने झूठ बोलने की कोशिश की। हाँ, मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं, वो तंजिया हंसी। इन लोगों को ऐसे ही छोड़कर वो नीचे आ गई जब तामिया इसके पीछे आई। कितने दिन रह गए हैं तुम्हारी तलाक में, तामिया ने पीछे से आकर कहा। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं है। सब कुछ पता है, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि इस घर में राज करो। तुम्हारी औकात है मामू के किराए के मकान में जाने की, ये तो मेरा घर है, यहाँ पर मैं आऊंगी। शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुम्हें लगता है ऊन जैसा बंदा तुम पर फिदा हो सकता है। औकात है तुम्हारी उनके साथ चलने की? ऊन मेरा है, याद रखना, सिर्फ मेरा। यकीन नहीं आ रहा तो एक मिनट, अभी यकीन दिलाती हूँ। तामिया ने कहते हुए अपना फोन निकाला और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जहां पर ऊन के कल रात वाले इजहार मोहब्बत के अल्फाज गूंज रहे थे। ये सब तो वो कल ही सुन चुकी थी। बहुत जल्दी ऊन तुम्हें यहाँ से तलाक देकर बाहर निकाल देगा और यहाँ मैं आऊंगी। ये घर मेरा है, तुम्हारा शोहर मेरा है, जिस कमरे में तुम रहती हो उस कमरे पर मेरा हक है। बस बीबी, यहाँ से रफू चक्कर होने का इंतजार करो, इससे पहले कि वो तुम्हें खुद यहाँ से निकाल दे। शराफत से यहाँ से तलाक लेकर निकल जाओ और मामू से निकाह कर लो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। जानती हूँ आरजू, तुम्हारा इसके साथ रिश्ता बन भी गया तो वो सिर्फ एक मर्द की जरूरत होगी। मोहब्बत तो वो मुझसे करता है, तुम्हारे साथ तो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेगा। इसकी जरूरत बनने से बेहतर है कि तुम इससे तलाक ले लो। तुम में ऐसा है ही क्या जो वो आंख उठाकर तुम्हें देखे? तामिया तंजिया अंदाज में कहती वहां से जा चुकी थी, जबकि आरजू को ऐसा लगा जैसे आज वो अपनी इस बहन के सामने बेलिबास हो चुकी है। इसके शोहर का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि इसकी अपनी तायाजाद बहन से था। ये थी इस शख्स की मोहब्बत, इसके लिए वो इसे ठुकरा रहा था। आरजू अपने आंसू साफ छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए वहीं पिलर के साथ खड़ी हो गई। इतना बुरा सलूक किया मैंने आरजू के साथ। शादी की पहली रात जब वो इतने ख्वाब से जाकर बैठी थी, मैंने इसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि इसी के ख्वाब से जाना चाहता था मैं। मैंने इसे शादी की पहली रात जलील किया, क्या वो मुझे माफ करेगी? मैंने इसे जमीन पर सुलाया, इसे इतना जलील किया इसकी शक्ल तक ना देखनी चाहिए, कितना बुरा महसूस करती होगी वो। मैंने इसे कोई उम्मीद नहीं दी, फिर भी वो ये रिश्ता निभाने की कोशिश करती रही, मेरे करीब रहने की कोशिश करती रही। कितनी मेहनत से मेरे कपड़े धोए, आयरन किए और मैंने जला दिए। जिन हाथों से घर आबाद करने का ख्वाब देखा था, इन्हीं हाथों से इसका हक छीन लिया, क्या वो मुझे माफ करेगी? वो बेचैनी से टहल रहा था। मैं इससे माफी मांग लूंगा, इससे अपने किए की माफी मांगूंगा। मैं आरजू को बताऊंगा कि इसकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं इतने वक्त से इसे ही ढूंढते हुए इसे इग्नोर कर रहा था। वो रूम में आएगी तो मैं इससे माफी मांगूंगा, वो यही सोच रहा था जब इसकी नजर पिलर के पीछे खड़ी अकेली आरजू पर पड़ी। ये बिल्कुल अकेली यहाँ क्या कर रही थी? एक ही मिनट लगा इसे समझने में कि वो रो रही है। ऊन ने आज पहली बार इसके कपड़ों को नोट किया था, इसका बैग गला काफी खुला था। अचानक ही ऊन को गुस्सा आ गया, इसकी बीवी और अपनी नुमाइश करे, ये तो ऊन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। लेकिन वो ये भी बात अच्छे से जानता था कि इन सब ने एक जैसे कपड़े खरीदे हैं, यकीनन इन सब का डिजाइन भी एक जैसा ही होगा। यहाँ क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? वो इसके करीब जाकर पूछने लगा, जबकि आरजू इसके अचानक आने पर बुखलाकर जाने लगी। कुछ नहीं, बस जा रही थी। रुको, तुम ये दुपट्टा ठीक से लो, पीछे से गला बहुत खुला है। आम सा बंदा हूँ यार, बीवी की नुमाइश पसंद नहीं है। इस तरह घूरो मत, दुपट्टा ठीक करो। ऊन खुद ही आगे बढ़कर इसका दुपट्टा ठीक करने लगा। इसका दुपट्टा ठीक से इसके सर पर सजाकर वो काफी मुतमईन लग रहा था। अब ठीक है, वो मुस्कुराया, फिर झुका और इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। शादी के एक महीने बाद तुम्हारी सालगिरह थी ना, हो गई या अभी होनी है? वो इसका हाथ थामते हुए पूछने लगा, जबकि वो इसकी इस पेशे कदमी का मतलब नहीं समझ पा रही थी। इसे तामिया की बातें याद आने लगी। इस जुम्मा को है, वो बहुत धीमी आवाज में बोली। ऊन बेख्तियार मुस्कुराया, इसका मतलब इतना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे पास आने के लिए। चलो जी, कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। ये सब कुछ खत्म करके जल्दी कमरे में आना, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वो इसका गाल खींच कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जबकि तामिया की बातें याद करते आरजू एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मतलब वो मोहब्बत तामिया से करेगा और एक साल तक इसे इस्तेमाल करेगा, अपनी माँ की बात भी मान लेगा और अपनी मोहब्बत भी हासिल कर लेगा। बीच में पिसेगा कौन? सिर्फ आरजू? तन्हाई सिर्फ आरजू के हिस्से में आएगी? क्या तुम मेरे कमरे में सोगी? ये तो अच्छी बात है, चलो अंदर आ जाओ। वैसे भी ऊन भाई तो इतना गुस्सा करते रहते हैं, मैं तो चाहती हूँ जब तक मेरी शादी होती है तुम हमारे साथ ही रहो। जरिश ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए इसे अंदर बुलाया। ऊन ने इसे कमरे में बुलाया था जहाँ अपने आप को तैयार करने के बाद भी वो नहीं जा पाई। वो कैसे एक मर्द की सिर्फ जरूरत बन सकती थी, जबकि शादी की पहली रात ही वो इस पर यह राज खोल चुका है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और इसका कभी नहीं हो सकता। آدھی آدھی رات اٹھ کر اپنی محبوبہ سے باتیں کرتا ہے، وہ کیسے اس کے قریب جا سکتی تھی جبکہ نہ تو وہ اسے پیار کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ وہ تو صرف اپنی ماں کی بات مان کر اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھا رہا تھا اور ایک سال کے بعد اسے طلاق دے کر ویسے بھی فارغ کرنے والا تھا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آرزو اسے اچھی لگنے لگے اور وہ اس تامیہ کو بھلا دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن پہلی محبت تو کوئی نہیں بھولتا، تو کیا وہ اپنی پہلی محبت کو بھول جائے گا؟ نہیں، اپنی پہلی محبت کو کوئی نہیں بھول سکتا، اور اون بھی اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ آرزو کبھی اس کی پہلی چاہت نہیں بن سکتی۔ وہ اپنے آپ سے لڑتی زرش کے کمرے میں ہی آ کر سو گئی۔ اون ساری رات ایک پل نہ سویا، وہ ہر دو تین منٹ بعد دروازے کی طرف دیکھتا، نہ جانے وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ کتنا بے چین تھا وہ اسے یہ بتانے کے لیے کہ جس لڑکی کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا وہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ اس نے اس رات یہ سوچ کر اس کے سامنے تامیہ سے بات کی تھی کہ وہ اسے کوئی امید نہ رکھے گی، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچتی ہوگی اس کے بارے میں کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کے تامیہ سے بات کر رہا تھا۔ پر جو بھی تھا، اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی اپنی بیوی تھی جس کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ وہ ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ دو تین بار اسے باہر ڈھونڈنے بھی گیا لیکن نہ جانے وہ مہمانوں میں بزی تھی یا کوئی اور وجہ، وہ ساری رات کمرے میں نہ آئی۔ تمہارے اس برتھ ڈے پہ میں تم سے معافی مانگوں گا آرزو، ان سب خطاؤں کے لیے جو میں نے انجانے میں کی۔ مجھے یقین ہے تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ صبح اٹھتے ہی اپنے کام پر چلا گیا، اسے آج بہت ضروری کام تھا۔ جبکہ بابا کو اعتراض تھا کہ گھر میں بہن کی شادی ہو رہی ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی سنبھال رہا ہے۔ بابا اور تایا ابا نے اس کے پیچھے کافی جلی کٹی باتیں کی جس میں اس کے بھائی بھی شامل تھے۔ آج سے پہلے آرزو نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے یہ باتیں بری لگنے لگی تھی۔ کوئی اس کے شوہر کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرے، لیکن وہ جانتی تھی اس کا شوہر کام ہی ایسے کرتا ہے۔ گھر میں شادی ہے اور وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا بول رہا ہے تو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو معجزہ ہو گیا، عمر خوشی سے ناچنے لگا۔ اور نہیں تو کیا، یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں معجزہ ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس لڑکی کو میں چاہوں گا وہ اتنی آسانی سے میری ہو جائے گی۔ لیکن تجھے پتا ہے عمر، میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن دو دن بعد اس کی برتھ ڈے ہے اور اس کی اس برتھ ڈے پر میں اس سے معافی مانگوں گا اپنے ہر برے رویے کی جس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ میں نے اس کے چھوٹے سے دل کو کتنی بری طرح سے کچلا، لیکن میں اس سے اپنے ایک ایک لفظ کی معافی مانگوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ رات تو وہ مصروف رہی، وہ کمرے میں آئی ہی نہیں، ورنہ میں رات کو ہی اس سے معافی مانگ لیتا۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں اس کے برتھ ڈے پر اس سے معافی مانگوں گا اور اسے یقین دلاؤں گا کہ اس کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ لیکن یار، میری جان کا عذاب بن گئی ہے یہ لڑکی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا جہاں پہ تامیا کی کال آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ چڑیل کون ہے جو میرے گلے پڑ گئی ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، اگر تجھے جلدی نہ ہوتی تامیا سے میری بات کروانے کی تو سب کچھ ٹھیک رہتا۔ اس نے سارا الزام عمر کے سر پر پھینکا۔ ہاں تو بھائی، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تیری والی وہی لڑکی نکلے گی۔ خیر تو فکر مت کر، اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تجھے نہیں دیکھا اور تو نے اسے نہیں دیکھا، بات ختم۔ اور یہ ذرا ذرا سی باتیں تو پاکستان میں ویسے بھی آئے دن ہوتی رہتی ہیں، عمر نے بے نیازی سے کہا۔ ارے نہیں یار، یہ لڑکی مجھے جانتی ہے، یہاں تک کہ یہ تو یہ بات بھی جانتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اور اب اگر میں نے اس لڑکی کو یہ کہا کہ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی ہے میں اسے تمہیں سمجھ کر تم سے باتیں کر رہا تھا، تو یہ آرزو کے پاس آ کر نہ جانے کیا کیا بکواس کرے۔ تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے ایک بار اس لڑکی سے مل کر اسے سمجھانا پڑے گا کہ میں جس لڑکی کو سوچ کر تم سے باتیں کر رہا تھا وہ تو میری اپنی بیوی ہے، اور اب میں تم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتا اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی کہے گی ہاں بھائی کیوں نہیں، جیسے آپ کی مرضی، چلی جاتی ہوں، عمر جل کر بولا۔ ہاں تو کیا کروں، میں تمہارا مشورہ لینے آیا ہوں، تم سے مدد چاہتا ہوں۔ میں ایک طرف سے لائف سیٹ ہوئی ہے تو دوسری طرف سے بگڑ رہی ہے، پلیز مدد کر دے۔ اون نے بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اچھا میری جان، تو فکر مت کر، اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں، لیکن پہلے تو مجھے بھابھی سے ملوائے گا۔ ہاں کیوں نہیں، آج رات کو مہندی پہ آ تو رہا ہے، بہت پیاری ہے وہ، اتنی کیوٹ ہے کہ کیا بتاؤں، ऊन एक बार फिर से इसके चेहरे में खोने लगा तो उमर बेसख्ता मुस्कुराया। ऊन अभी अभी घर वापिस आया था, घर मेहमानों से भरा हुआ था। इसने एक नजर पूरे घर की तरफ देखा, लेकिन आरजू इसे कहीं भी नजर न आई। एक बार दिल चाहा सामने से आती महरिश से पूछ ही ले, लेकिन इससे वो कभी ज्यादा बात नहीं करता था। घर के हर कोने में देखता वो अपने कमरे में आ गया, वो इसे कहीं नजर नहीं आई। कमरे में आया तो तामिया का फोन आने लगा। ये चुड़ैल अच्छी गले पड़ गई है, अब इससे पीछा कैसे छुड़वाऊं। वो कॉल कट करके फोन बेड पर उछालता नहाने चला गया। आरजू अपना कुछ सामान लेने अभी कमरे में आई थी जब इसका फोन बजता हुआ देखा। फोन पर तामिया का नाम साफ जगमगा रहा था। फोन काफी देर से बजता रहा, फिर आखिरकार आरजू ने फोन उठा ही लिया। हेलो, आरजू ने फोन उठाकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊन के फोन को हाथ लगाने की? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें? वो तुम्हें घास तक नहीं डालता और तुम इसका फोन अटेंड कर रही हो। जानती हो इसके बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? तामिया जो कब से ऊन के फोन उठाने का इंतजार कर रही थी और बार बार फोन कट होने की वजह से काफी हद तक गुस्से में थी, इसकी आवाज सुनते ही चिल्ला कर बोली। जी, मैंने यही बताने के लिए फोन उठाया है कि ऊन नहा रहे हैं, आप बाद में फोन कर लीजिएगा। वो इतना कहकर फोन बंद कर चुकी थी, जबकि वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा ऊन इसकी आखिरी बात सुन चुका था। आरजू कहीं तामिया से बात तो नहीं कर रही थी? वो परेशान सा इसके करीब आया जब आरजू ने फोन इसकी तरफ बढ़ाया। आपकी गर्लफ्रेंड का फोन था, आपसे बात करना चाहती हैं, बात कर लीजिए। वो फोन इसके हाथ में थमाती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो इसके पीछे लपका था। लेकिन घर में इतने मेहमान देखकर वो वापस अपने कमरे में आ गया, क्योंकि इस वक्त इसने सिर्फ जीन्स पहनी हुई थी और गले में टॉवल डाला था। काफी देर वो कमरे में यहां से वहां टहलता रहा, ना जाने तामिया ने इससे फोन पर क्या कहा होगा, कहीं अपने और मेरे बारे में कोई बकवास ही ना कर दी हो। वो आरजू को सब कुछ क्लियर करना चाहता था, लेकिन अब इसे ये भी परेशानी थी, न जाने तामिया ने इसे क्या बताया हो। वो अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ रही थी। वो काबले कबूल कपड़े पहनता कमरे से बाहर निकलकर आरजू को ढूंढने लगा। ये घर इतना भी बड़ा नहीं था, ना जाने कौन से कोने में छुपकर बैठ जाती है कि मिलती ही नहीं। वो खुद ही बड़बड़ाता इसे ढूंढने लगा। सुने ताई अम्मी, आपने आरजू को कहीं देखा? इसने सामने से आती ताई अम्मी से पूछा, जो इसके इस सवाल पर हैरान और परेशान नजरों से इसे देख रही थी। लगता है फिर से आरजू की शामत आ गई। वो इसे बताने ही वाली थी कि वो किचन में है, लेकिन फिर सोचा ये ना हो कि ऊन गुस्से में हो और बेचारी को डांट दे। बेटा, शादी वाला घर है, ना जाने कहाँ होगी, यहीं कहीं होगी। कोई काम था तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ, वो आरजू की जान बचाने के लिए बोली। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही ढूंढ रहा था, वो आज अपने मिजाज के खिलाफ मुस्कुरा कर बोला था, फिर उन्हें हैरान छोड़कर आगे बढ़ गया। आरजू बीबी, लगता है आज ही अपने साथ हुए सारे जुल्म का हिसाब लोगी। ढूंढ ढूंढ के आखिर इसे वो किचन में नजर आ ही गई, लेकिन किचन में वो अकेली नहीं थी, बल्कि महरिश भी इसके करीब थी। सुनो, तुम्हें बाहर कुछ लड़कियां ढूंढ रही हैं, ऊन ने महरिश की तरफ देखकर कहा। महरिश तो इसे देखकर रह गई, जो आज पहली बार अपने भाई से मुहातिब हुई थी। जी भाई, मेरी सहेलियां आ गई होंगी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सबके लिए चाय बनाकर बाहर ही ले आना। वो क्या है ना, मेरी सहेली पहली बार हमारे घर आई है, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानती, महरिश ने बाहर निकलते हुए इसे कहा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी, आरजू ने इसे बाहर भेजा, फिर से चाय बनाने में मसरूफ हो गई। जब इसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। लड़की, तुम मुस्कुराती नहीं हो क्या, हंसने पर कोई पाबंदी है? यकीन करो, हंसते हुए बहुत प्यारी लगोगी, जरा मुस्कुराकर दिखाना। ऊन के अचानक इस तरह से करीब आने पर पहले तो वो बुखलाकर रह गई, फिर बाहर की तरफ देखकर इसके हाथ जल्दी से अपनी कमर से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या कर रही हो, बस मुस्कुराने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, फिर मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुस्कुराता देखे बगैर तो मैं यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलने वाला। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ से मैं शराफत से बिना कोई शरारत किए चला जाऊं, तो मुझे मुस्कुरा कर दिखा दो, वो इसे आंख मारकर शरारती अंदाज में बोला। ऊन जी, प्लीज जाइए यहाँ से, आप क्या कर रहे हैं? आरजू का सारा ध्यान किचन के दरवाजे पर था, बाहर हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, कोई भी कभी भी यहाँ आ सकता था। बातें मत बनाओ आरजू, मैंने तुम्हें रात को कमरे में बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? कल तुमने अपने शोहर के हुक्म की नाफरमानी की, अब मैं तुम्हें मुस्कुराने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम यहाँ भी नखरे दिखा रही हो, नहीं नहीं नखरे उठाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो वैसे भी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातें भी माननी पड़ेंगी, जैसे कि अभी मैं तुम्हारे इस खूबसूरत लाल टमाटर गाल पर किस करूंगा। वो जोर से इसके गाल को अपने लबों से छूते हुए बोला, और तुम आगे से कुछ नहीं बोलोगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि आरजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जबकि वो इससे कुछ नहीं कह पाई थी, नजर सामने चाय पर जम चुकी थी। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी सारी बातें मानना। ये छोटी सी सजा रात को कमरे में ना आने की। जानता हूँ यार, तुम बहुत बिजी थी रात को, इतना काम जो करना पड़ता है। लेकिन ये सारे काम करने के लिए घर में और भी लोग मौजूद हैं। तुम फिलहाल अपने शोहर की खिदमत करो, जो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। आरजू, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, और मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी बातें रात को कमरे में आने के बाद, और आज रात को कमरे में जरूर आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर निकल गया, जबकि आरजू को इसकी एक एक बात झूठ लगी थी। वो कैसे इसकी इस रात की वो बातें भूल जाती। जब इसने अपनी पहली रात की बीवी को ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो इसकी मोहब्बत नहीं मजबूरी है, वो सिर्फ इसकी माँ की बहू है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो कैसे भूल जाती इन सब बातों को, जो इस कमरे में रहकर इसने किसी और से की थी। वो किसी और को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था, आज वो कहता है कि तामिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जबकि तामिया इसकी और अपने रिश्ते की गहराई तक इस पर जाहिर कर चुकी थी। वो सिर्फ अपनी माँ की ममता की कीमत चुकाने के लिए इसके करीब आ रहा था। आरजू का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। आखिर क्यों वो हर इंसान की नफरत की हिस्सेदार बनती है, क्यों इसे किसी की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। उन काफी देर से इसके कमरे में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो थी जो कमरे में आने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर लोगों का काफी रश था, मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी। थोड़ी देर कमरे में बैठने के बाद वो भी उठकर बाहर चला गया, ताकि आरजू को खुद कमरे में लेके आ सके। आज दोपहर में वो आरजू के इतने करीब गया, लेकिन आरजू ने इसे कुछ ना कहा। मतलब यही था कि वो भी ये रिश्ता निभाना चाहती है, शायद वो भी इसे पसंद करती है। ये बात सोचते हुए इसका दिल अलग ही तरंग में धड़का। इसने एक नजर हॉल पर डाली, जो इसे कुछ खास पसंद नहीं आया। ये क्या घर में शादी है, और ये हॉल सजाया गया था। इस घर में सेंस नाम की चीज किसी में है ही नहीं। इसने सामने खड़े समीर और हारिस को देखा, जिनकी मेहनत से ये हॉल जगमगा रहा था। अगर मैं इस हॉल को सजाता तो कम अज कम इनसे बेहतर सजाता। वो एक अफसोसनाक नजर पूरे हॉल पर डालता आरजू को ढूंढने में मसरूफ हो गया। आरजू बेटा, आओ रस्म कर लो। वो जो कब से आरजू को ढूंढ रहा था, जुबैदा की आवाज पर फौरन पलटा। वो सामने ही सबस चूड़ीदार के ऊपर पीली शॉर्ट फ्रॉक पहने, लंबा सा दुपट्टा सर पर सजाए इतनी प्यारी लग रही थी कि ऊन को लगा अब अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। शायद इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की ऊन ने कभी देखी ही नहीं थी। ऊन का दिल चाहा कि इसे सारी दुनिया से छुपाकर अपने दिल में रख ले। इससे पहले कि आरजू इसके करीब से गुजर कर रस्म अदा करने स्टेज पर जाती, ऊन ने इसका हाथ पकड़ा। सब अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रस्म अदा कर रहे हैं, तुम अकेले कहाँ चल दी, मुझे साथ लेकर नहीं जाओगी। वो शरारत से कहता इसके साथ चल दिया। आरजू ने एक नजर स्टेज से उतरती तामिया की तरफ देखा, जो इन दोनों को देखकर अपनी जलन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऊन ने मजबूती से इसका हाथ थामा और स्टेज पर चढ़ने लगा। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज उतर जाएं, इसने तामिया से कहा, जो आरजू को सख्त नजरों से घूरती स्टेज से नीचे उतर गई। आरजू को इसके इरादे खतरनाक लगे, जबकि वो ये समझ नहीं पाई थी कि ऊन इसे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहा है। जबकि कुछ फासले पर खड़ी जुबैदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ना था, जो अपने सामने अपनी बहू और बेटे को एक दूसरे का हाथ थाम कर स्टेज पर चढ़ते हुए देख रही थी। वो खुद बहुत परेशान थी, ऊन को अचानक हो क्या गया है, वो तामिया को इग्नोर क्यों कर रहा है, वो तामिया से इस तरह से बात कर रहा था जैसे इसे जानता तक नहीं। तामिया जितनी देर इनके घर में रही बस इसे घूरती ही रही, इसे अब तामिया से डर लगने लगा था। उनको वो समझ नहीं पा रही थी, जबकि पुप्पो बहुत खुश थी। ये थी दीदारे इश्कम की 5th एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजिली मिल सके।